एहेस्केल अध्याय 39, एहेस्केल अध्याय 39 पद 1 और 2। फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके ये कह, हे गोग, हे रोश, मेशक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यू कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूं। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। उनका 6 में से 5 भाग नाश हो जाएगा। एहेस्केल 39 पद 3 से लेकर 6 तक। वहां मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इसराइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। तू खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसे कहा है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं मागोग में आग लगाऊंगा। ये परमाणु युद्ध की संभावना है, मैं मागोग में आग लगाऊंगा। एहेस्केल अध्याय 39 पद 6 में आगे लिखा है, और द्वीपों में निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा, अर्थात दूरस्थ राष्ट्रों के निवासी। एहेस्केल अध्याय 39 पद 6 के अंत में लिखा है, और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। ये परमाणु युद्ध की संभावना है, क्योंकि स्वर्ग से आग और गंधक बरसेगा। एहेस्केल अध्याय 39 पद 7 और 8, और मैं अपनी प्रजा इसराइल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र ना होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इसराइल का पवित्र हूं। ये घटना हुआ चाहती है और वो हो जाएगी, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। ये वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। कुछ बहुत ही गंभीर भविष्यवाणियों में परमेश्वर कह चुका है, बस बहुत हुआ। ये वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। एहेस्केल अध्याय 39 पद 9। तब इसराइल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे, ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बर्चे, सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। आधुनिक युग की परिभाषा में वे पेट्रोलियम को जलाते रहेंगे, क्योंकि इस सैनिक अभियान में वे अपना ईंधन भी साथ लेकर चलेंगे, जो इनके लिए 7 वर्ष तक पर्याप्त होगा। एहेस्केल अध्याय 39 पद 10 और 11। और इसके कारण वे मैदान में लकड़ी ना बिनेंगे, ना जंगल में काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों ही को जलाया करेंगे और वे अपने लूटने वालों को लूटेंगे और अपने छीनने वालों से छीनेंगे, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मैं गोग को, मेशक और तूबल का अर्थात रूस का शासक, एहेस्केल अध्याय 39 पद 11 में आगे लिखा है, इसराइल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। वो ताल की पूर्व ओर होगा। वे सब जॉर्डन में मृत सागर के पूर्व में गाड़े जाएंगे और वो घाटी आने जाने वालों की घाटी या गोग के जन समूह की घाटी कहलाएगी। एहेस्केल अध्याय 39 पद 11 में आगे लिखा है, और आने जाने वालों को वहां रुकना पड़ेगा। वहां सब भीड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी और उस स्थान का नाम गोग की भीड़ की तराई पड़ेगा, और वो घाटी आने वालों की घाटी या गोग के जन समूह की घाटी कहलाएगी। एहस्केल अध्याय 39 पद 12। इसराइल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा ताकि अपने देश को शुद्ध करे। उन मुर्दों को गाड़ने में इसराइल को 7 महीने लग जाएंगे। एहस्केल अध्याय 39 पद 13 और 14। देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब वे मनुष्यों को नियुक्त करेंगे। दूसरे शब्दों में उन्हें गाड़ने के लिए पेशावर मजदूरों की व्यवस्था करनी होगी। एहस्केल अध्याय 39 पद 14 से लेकर 16 तक। जो निरंतर इसी काम में लगे रहेंगे अर्थात देश में घूम घूम कर आने जाने वालों के संग होकर देश को शुद्ध करने के लिए उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हो मिट्टी देंगे और 7 महीने के बीतने तक वे ढूंढ ढूंढ कर ये काम करते रहेंगे और देश में आने जाने वालों में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखें तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेगा। ये उस समय तक बना रहेगा जब मिट्टी देने वाले उसे गौ की भीड़ की तराई में गाड़ ना दें। वहां के नगर का नाम भी हमोना है। यूं देश शुद्ध किया जाएगा। इसराइली हड्डियों को नहीं छुएंगे। वे जहां भी हड्डी देखेंगे एक निशान डाल देंगे और तब गाड़ने वाले आकर उसे उठाएंगे। रेडियो धर्मिता के कारण वे हड्डियों का स्पर्श नहीं करेंगे। यही कारण है कि 7 महीने का समय दिया जा रहा है। विशेषज्ञों के द्वारा से अर्थ यही है कि अति सावधानी से इन रेडियो धर्मी हड्डियों को उठाया जाएगा। एहस्केल अध्याय 39 पद 17 से लेकर 22 तक। फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इसराइल के पहाड़ों पर करता हूं। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। तुम शूर वीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे और मेड़ों मेमनों बकरों और बैलों का भी जो सब के सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे। और मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं तुम खाते खाते आधा जाओगे और उसका लहू पीते पीते चख जाओगे। तुम मेरी मेज पर घोड़ों सवारों शूरवीरों और सब प्रकार की योद्धाओं से तृप्त होंगे, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम जो मैं करूंगा और मेरा हाथ जो उन पर पड़ेगा देख लेंगे। उस दिन से आगे इसराइल का घराना जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। ये इसराइल के पुनस्थापना का दिन होगा जब परमेश्वर उन्हें फिर से अपनी प्रजा स्वीकार करेगा और वे जान लेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। एहस्केल अध्याय 39 पद 23। और जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि इसराइल का घराना अपने अधर्म के कारण बंधुआई में गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा विश्वासघात किया कि मैंने अपना मुंह उनसे फेर लिया और उनको उनके बैरियों के वश कर दिया और वे सब तलवार से मारे गए। यहां परमेश्वर कहता है कि मैंने अपना मुंह उनसे फेर लिया, छिपा लिया। परंतु पद 29 में वो कहता है, और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना फेर लूंगा। प्रेरित पौलुस ने रोम के विश्वासियों को परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में उदाहरण देकर समझाया था कि परमेश्वर ने हम अन्य जातियों को, जिन्हें वो जंगली जैतून कहता है, लेकर अच्छे जैतून अर्थात पुराने नियम की प्रतिज्ञाओं में प्रत्यारोपित किया है, उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने में जो यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी। अतः पौलुस कहता है, रोमियो अध्याय 11 पद 18, डालियों पर घमंड ना करना, क्योंकि यदि परमेश्वर हमारे लिए उनकी काट छाट कर सकता है तो वो उनका पुनर्स्थापन भी करेगा। परमेश्वर ने क्या उन्हें काट कर फेंक दिया है? परमेश्वर ना करे, परमेश्वर ने कुछ समय के लिए उनकी आंखों पर पर्दा डाला है कि अन्य जातियां पूरी रीति पूर्णता से प्रवेश करें, तदोपरांत पूरी इसराइल जाति उद्धार पाएगी। परमेश्वर सियोन से एक उद्धारक भेजेगा जो संतानों के मन माता पिता की ओर फेर देगा। पौलुस ये संदर्भ योवल की पुस्तक के अध्याय 2 से देता है। पौलुस भी इस भविष्यवाणी को कलीसियाओं से नहीं जोड़ता है। कलीसिया का स्थान अलग है, वो एक जंगली डाली है जिसे परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं में लिया है। परमेश्वर इसराइल में अपना नाम फिर से करेगा। वे जो कहते हैं कि परमेश्वर ने इसराइल से संबंध समाप्त कर दिया है और यहूदियों का नाश हो चुका है और आज के यहूदी प्रतिज्ञा की संतान नहीं है, वे वचन के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, वे भविष्यवाणियों का अनुचित अर्थ निकालते हैं। परमेश्वर ने सदैव ही इसराइल के लिए अपने अनंत प्रेम का प्रदर्शन किया है, उसने कुछ समय के लिए उन्हें अंधा कर दिया है, समय आने पर वो उन्हें फिर से समृद्धशाली बनाएगा और वे परमेश्वर के राज्य में एक विशेष जाति होकर आनंद मनाएंगे। यहां परमेश्वर कहता है कि उसने कुछ समय के लिए उनसे अपना मुंह छिपा लिया है। एहेस्केल अध्याय 39 पद 24 से लेकर 27 तक, मैंने उनकी अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार उनसे बर्ताव करके उनसे अपना मुंह फेर लिया था। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से फेर लाऊंगा और इसराइल के सारे घराने पर दया करूंगा और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया, वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे और कोई उनको ना डराएगा। और जब मैं उनको जाति जाति के बीच से फेर लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। ये भविष्यवाणी उस समय के लिए है जब परमेश्वर इसराइल को लौटाकर लाएगा और उन्हें एक संपूर्ण राष्ट्र बनाएगा तथा आक्रमणकारी रूसी सेना को पराजित करेगा। पद 27 का दूसरा भाग, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा, ये रूसी सेना के विनाश पर होगा। देखिए एहेस्केल 38 पद 23, और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। अब रूस की सेना के विनाश के बाद क्या होगा? एहेस्केल अध्याय 39 पद 28, और तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है, मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में ना छोड़ूंगा। वे रूस की सेना के विनाश तक नहीं जानेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। आज इसराइल राष्ट्र के रूप में यहोवा का अनुयायी नहीं है, केवल 10% लोग ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। जिन यहूदियों से मेरी भेंट हुई है उनमें से अधिकांश नास्तिक है। वहां का एक ही धार्मिक दल है जो निसित कहलाता है, और इनके बिना वहां की सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। ये लोग सरकार को सहयोग देने का भारी मूल्य वसूल करते हैं। वे धार्मिक नियमों की स्थापना करवाते हैं जिन्हें वहां की आम जनता पसंद नहीं करती है, परंतु ये उनकी शर्त है और सरकार को उसे स्वीकार करना होता है। इसराइल में कुछ हठधर्मी और कुछ कट्टर यहूदी भी है। कुछ कट्टरवादी तो सरकार के विरुद्ध है और वे कहते हैं कि इस सरकार को हट जाना चाहिए। उनका कहना है कि मसीहा के आने तक इसराइल को राष्ट्र नहीं बनना है। उनके एक रबी ने तो जॉर्डन के राजा हुसैन को लिखा भी है कि वे उन्हें मेशरीम को जॉर्डन की नागरिकता देकर इसराइल से बाहर निकाल ले। उनके विचार में इसराइल की सरकार को मसीहा के आने तक विघटित रहना चाहिए। रूस की पराजय पर उनकी आंखें खुल जाएंगी और वे परमेश्वर यहोवा को पहचानेंगे और उनमें एक विशाल जागृति आएगी। परमेश्वर कहता है, और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना फेर लूंगा। एहेस्केल अध्याय 39 पद 29। और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना फेर लूंगा, क्योंकि मैंने इसराइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। रूस की सेना का विनाश होने पर परमेश्वर इसराइल राष्ट्र पर अपना आत्मा उंडेल देगा। इसका अर्थ बड़ा ही गंभीर और प्रभावशाली है। आज उसने अन्य जातियों पर अपना आत्मा उंडेला हुआ है, क्योंकि उसे प्रभु यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन की आवश्यकता है। आज संसार में पवित्र आत्मा के काम हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा कार्य कर रहा है कि मसीह के लिए एक दुल्हन तैयार करें और दुष्ट के सामर्थ को रोकें। आज अनेक लोग कलीसिया से घृणा करते हैं, कलीसिया को ठट्टों में उड़ाकर उसका झूठा प्रदर्शन करके, उसका रूप विकृत करके उसे नाश करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वो दुष्ट के कार्यकर्ता को रोकती है कि गंध संसार में ना आए। संसार को तो कलीसिया का आभारी होना चाहिए कि वो दुष्ट के कामों पर रोक लगाए हुए हैं, अन्यथा आज संसार में इंसानियत ही नहीं रहती और क्रिस्त विरोधी का राज आ जाता। जिस दिन परमेश्वर का आत्मा यहां से प्रस्थान कर जाएगा, उस दिन पाप का मनुष्य या विनाश का पुत्र आएगा और संसार में झूठ और छल का प्रचार करता हुआ संसार को अपने अधीन कर लेगा और दुराचार के लिए द्वार खुल जाएगा। परंतु जब तक आत्मा कलीसिया में होकर यहां है, वो उसे रोके रहेगा। जब प्रभु कलीसिया को उठा लेगा, तब आत्मा इसराइल पर ठहरेगा। ये समय 7 वर्ष का होगा। दानियल की पुस्तक अध्याय 9 में इसराइल के लिए 70 सप्ताह दिए गए हैं, जिनमें से 59 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, क्योंकि यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा से मसीह अर्थात शांति के राजकुमार के आने तक 7 सप्ताह एवं 62 सप्ताह अर्थात कुल 483 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये मसीहा सिंहासन पर नहीं बैठेगा कि राज करे, उसके स्थान पर पृथ्वी का राजकुमार आएगा जो पवित्र नगर को नाश करेगा। ये राजकुमार नीरो तीतुस था। ये दानियल की पुस्तक के अध्याय 9 के 25 और 26 पद में है, और यहूदी तितर बितर किए जाएंगे। ये भविष्यवाणी एक एक दिन करके पूरी हुई। मार्च 14 445 ईसा पूर्व में शयर्स ने यरूशलेम के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण की आज्ञा दी। बाबुल के कैलेंडर के अनुसार, जिसमें वर्ष 360 दिन का होता है, ठीक 483 वर्ष बाद अप्रैल 6 सन 32 में यीशु ने यरूशलेम में अपनी शोभा यात्रा कर प्रवेश किया। वहां वो काट दिया गया, अर्थात उसी सप्ताह उसे क्रूस पर लटकाया गया। उसे राज्य नहीं मिला। तीतुस ने अपनी रोमी सेना के साथ आकर यहूदियों को तितर बितर कर दिया। वे 1900 वर्ष तक तितर बितर रहे। उसने यरूशलेम को ध्वस्त कर दिया था। अब 70 सप्ताहों में 59 सप्ताह तो पूरे हो गए जब परमेश्वर इसराइल पर अपना आत्मा उंडेलेगा। अब आएगा विश्व शासक जो इसराइल के साथ वाचा बांधेगा और उन्हें मंदिर के निर्माण का सौभाग्य प्रदान करेगा। हम उसे अध्याय 40 में देखेंगे। वहां वो नए पवित्र स्थान की भी चर्चा करेगा। ये शासक मंदिर के बन जाने के बाद आकर वहां खड़ा हो जाएगा और आज्ञा देगा कि उसकी उपासना की जाए। इसी को उजाड़ने वाली घृणित वस्तु कहा गया है। इस पाप के मनुष्य के लिए पौलुस ने भी कहा है कि वो मंदिर में खड़ा होकर अपनी उपासना की आज्ञा देगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, जब वे दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार मंदिर में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ा देखें तो जंगलों में भाग जाएं, क्योंकि तब ऐसा क्लेश का समय आएगा जैसा ना तो संसार ने देखा है और ना ही कभी देखेगा। दानियल कहता है कि इस व्यक्ति द्वारा ऐसा अनर्थ करने के 1290 दिनों के बाद यीशु का आगमन होगा और वो पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। इस प्रकार घटनाओं का क्रम देखिए। रूस का इसराइल पर आक्रमण, कलीसिया का उठाया जाना, इसराइलियों की आंखें खुलना, इसराइलियों पर परमेश्वर की आत्मा का उंडेले जाना तथा यूरोप के 10 राष्ट्रों के संघ में से पाप के मनुष्य का उदय, परमेश्वर अंतिम 7 वर्षीय समय के लिए इसराइल को आत्मा देगा, उधर पाप का मनुष्य ऊपर उठेगा। योवेल की पुस्तक अध्याय 2 पद 20 में योवेल भी ऐसी ही भविष्यवाणी देता है कि इसराइल पर एक विशाल सेना आक्रमण करेगी। और योवेल 2 अध्याय 11 पद, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है जो अपना वचन पूरा करने वाला है। वो सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है और उसको कौन सह सकेगा। हमने एहेस्केल की पुस्तक में देखा कि रूस की सेना उत्तर दिशा से आएगी और इसराइल पर आक्रमण करेगी। अब परमेश्वर योवेल की पुस्तक अध्याय 2 में कहता है, योवेल अध्याय 2 20 से 22 पर, मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका आगा तो पूरब के ताल की ओर और उसका पीछा पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगे। और इसराइल के लिए वो कहता है, योवेल अध्याय 2 पद 25, और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। जब रूस की सेना का नाश होगा तब वे परमेश्वर को जानेंगे। योएल अध्याय 2 पद 27 से 29। तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। इस गदांश के साथ समस्या का कारण है कि पत्रस ने इसे उस समय प्रयोग किया था जब पेंटिकॉस के दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया था। परंतु देखिए योएल अध्याय 2:23 में परमेश्वर आरंभिक वर्षों और अंतिम वर्षों की चर्चा करता है। योएल परमेश्वर की आत्मा के उंडेले जाने के लिए भविष्यवाणी देता है तो वो केवल इसराइल के लिए ही है, जैसे कि एहेस्केल भी अध्याय 39 में कहता है। पत्रस योएल का संदर्भ देकर केवल ये समझाना चाह रहा था कि वो पवित्र आत्मा ही है जो उन पर उतरा है। परंतु योएल कहता है कि अंतिम दिनों में जब इसराइल परमेश्वर को पहचान लेगा तब वो अपना आत्मा उन पर उंडेलेगा। देखिए वो तुरंत ही क्लेश के युग में चला जाता है। योएल अध्याय 2 पद 30 और 31। और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। यीशु ने भी मत्ती 24 में यही कहा था कि महाक्लेश के समय ये सब होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 में जब छठवीं मोहर खोली गई तब ये सब प्रलयंकारी घटनाएं घटी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सब भविष्यद्वक्ता उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसराइल अब फिर से अपने देश में है और अब अनेक भावी घटनाओं का एक साथ घटना संभव है। रूस का आक्रमण परमेश्वर तुरंत ही विफल करेगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, परमेश्वर का आत्मा इसराइलियों पर उंडेला जाएगा और वे जानेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। क्रिस्त विरोधी का उदय होगा तथा अंतिम 7 वर्ष का युग आएगा। पहले 3.5 वर्ष समृद्धि के होंगे, तदोपरांत रक्तपात का समय आएगा और इस प्रकार परमेश्वर पृथ्वी के पापों का और अपराधों का दंड देगा, जिसका सजीव विवरण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6-18 में दिया गया है। परमेश्वर ने मानवीय इतिहास में इन 3.5 वर्षों का सबसे अधिक वर्णन किया है। इन 7 वर्षों के बाद प्रभु यीशु अपने पवित्र जनों के साथ बादलों पर महान महिमा में आएगा और जैतून के पर्वत पर पैर रखेगा जो 2 भाग हो जाएगा। वो पूर्वी द्वार से यरूशलेम में प्रवेश करेगा और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। हम भी उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये एक भावी घटना क्रम जिसकी सीमा पर हम खड़े हैं। हम नहीं जानते कि कब परमेश्वर कलीसिया को उठा ले, कब रूस मध्य एशिया में प्रवेश कर जाए। परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा है और मैं करूंगा। वो 100% सही रहा है। वो यहूदियों को इसराइल देश में ले आया है और वो देश फल फूल रहा है। जब परमेश्वर इतिहास को यहां तक ले आया है तो वो क्यों कर शेष इतिहास को छोड़ देगा। जब वो यहां तक आ गया है तो निश्चय जानो कि वो कहानी का अंत भी करेगा। हम अंत समय की उल्टी गिनती करने पर है। ये तो उसी समय आरंभ हो गया था जब सयर्स ने यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा दी थी। उन्होंने 59 सप्ताह अर्थात 483 वर्ष गिने और मसीह आया, तब ये गिनती रुक गई। मसीहा काटा गया, इसराइली तितर बितर किए गए। गिनती का रुकना भी आवश्यक था क्योंकि सारी व्यवस्था फिर से करने की आवश्यकता थी। होशे कहता है, होशे अध्याय 6:2, दो दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। अर्थात 2000 वर्ष बाद पत्रस की गणना में, दूसरा पत्रस 3:8, प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। इसराइल 2000 वर्षों से विस्थापित था, परंतु परमेश्वर उन्हें अपने देश में लौटा लाया है। अब वो उल्टी गिनती गिनने के लिए तैयार है। रूस का आक्रमण और परमेश्वर के आत्मा का उंडेले जाना और अंतिम 7 वर्ष, परमेश्वर की उल्टी गिनती फिर से आरंभ होने को है। मेरे पास इसराइल के मंदिर के नव निर्माण के संबंध में आपके लिए अनेक जानकारियां हैं। हम एहेस्केल और प्रकाशित वाक्य को साथ साथ देखेंगे। हम उल्टी गिनती के लिए तैयार हैं। हमारी चिंता का विषय है प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध। यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 24:44, इसलिए तुम तैयार रहो। ये उसने कलीसिया के स्वर्ग प्रवेश के विषय में कहा है कि 10 कुवारियां दुल्हे के आगमन की प्रतीक्षा में सो गई। उनमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख। अकस्मात ही पुकार हुई कि दुल्हा आ रहा है। आज यही पुकार सुनाई दे रही है। कलीसिया जाग उठी है, परंतु मूर्ख कुवारियों की मशालों में तेल नहीं है। वे तेल मांगती है, परंतु कोई उन्हें देता नहीं है, अन्यथा वे रह जाएंगी। वे बाजार जाती है और दुल्ला आ जाता है। जो तैयार थी वे उसके साथ भीतर चली गई। अनेक जन आज तैयार नहीं है, वे नींद में हैं। वे अभी भी शरीर की अभिलाषाओं में मगन हैं। अब समय है कि हम आत्मा की बातों में रहें, तैयार रहें, दुल्ला आ रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रभु के आगमन हेतु तैयार रहें। अतः प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के सामने और आत्मा के सामने अपना दिल खोल दीजिए। परमेश्वर आप पर अपना आत्मा उंडेलना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके परिवार का एक भाग हो, मसीह की दुल्हन का एक अंग, परमेश्वर के राज्य के सहभागी। आज भी समय है कि जंगली जैतून का प्रत्यारोपण हो। संसार में क्रियाशील परमेश्वर के आत्मा का आप एक भाग हो सकते हैं कि मसीह की दुल्हन तैयार करें। समय अधिक नहीं है। भविष्यवाणियों को देखा जाए तो हम अन्य जाति 1967 के समय मांग मांग कर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा था, लूका अध्याय 21:24, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। 1967 में जब यहूदियों ने यरूशलेम को लिया तब अन्य जातियों का समय पूरा हो गया था। अतः हमें समय दिया जा रहा है जो अधिक लंबा नहीं होगा। यदि आपको कुछ करना है तो शीघ्र करें, या फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6:18 पढ़ें कि आप अपना भविष्य देख पाएं। प्रभु आपके साथ हो। प्रभु आपके मन को प्रेम से, स्तुति गान से और अपने आत्मा से परिपूर्ण करें। वो आपको मसीह के रूप में ढलने का काम करें और आपकी सहायता करें कि आप वैसे बन जाएं जैसा परमेश्वर आपसे चाहता है, अर्थात इस दरिद्र, दुखी, पाप से श्रापित संसार में उसके सच्चे प्रतिनिधि हो, यीशु के नाम में।